ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ
सरस्वतीं व्यासं
ततो जयामुदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ किम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 46 व्यासादेरिश्वरे याज्ञे कृष्णे नाद्भूत कर्मणा प्रबोधितोपितिहासे नाबुध्यत सुचार्पिता।
ना
व्यासाधेरिश्वरेयज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरेयज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरेयज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता। व्यासाधेरिश्वरेयज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे प्रबोधितोपितिहासे व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे न बुध्यत सुचार्पिता व्यासाधेरिश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे नाबुध्यत सुचार्पिता व्यासाद्य व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर इहा की इच्छा से गे विद्वान कृष्णेन स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा,
अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा
प्रबोधित ढाढ़स बंधाने पर,
ढाढ़स बंधाने पर
अपि
यद्यपि
इतिहास इतिहास के साक्ष्यों द्वारा,
इतिहास के साक्ष्यों
नहीं अबुध्यत संतुष्ट सुचारपिता दुखी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। अत्यधिक शोक में मग्न राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से आसन चला रहा था। इस तरह देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 अध्याय होगा, आदि पर्व के 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख इधर उधर भाग गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। महाभारत महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों अर्थात कथाओं के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहा गया है, लेकिन इस मामले में न तो व्यास ही राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए न ही कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अति मानवीय कार्यकर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के उपदोषों से शाश्वत नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्म देव के उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्र राजा युधिष्ठिर आदि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे, लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत क्रूर होते हैं। अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वे उसी के द्वारा पल रहे थे। इसके अतिरिक्त भगवान की यही इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते हेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशवानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस अध्याय में जैसे हमने आगे परीक्षित महाराज की भगवान कृष्ण ने किस प्रकार रक्षा की है, उसके बाद महारानी कुंती की स्तुति और उसके बाद राजा युधिष्ठिर का शोक, इस तीन बात को इस अध्याय में बताया गया है। जैसे महारानी कुंती ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है, जैसे सबसे पहले उन्होंने एक्चुअली प्रार्थना में सबसे ज़्यादा भगवान को प्रणाम ही किया जाता है ना, उन्होंने शुरुआत भी प्रणाम करते हुए की और उसका अंत भी प्रणाम करते हुए, सबसे पहले उन्होंने नमस्ते और लास्ट में नमस्ते, इस प्रकार महारानी कुंती भगवान की प्रार्थना की। एक्चुअली भगवान की जब कुंती महारानी स्तुति किए वो समय पे भगवान रथारूढ़ थे, रथ के ऊपर बैठे थे और वो समय पे महारानी कुंती भगवान की प्रार्थना किए, और जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भगवान बहुत ध्यान से उसको सुन रहे थे, और सुनते सुनते जैसे ही महारानी कुंती की स्तुति आगे बढ़ती गई वैसे वैसे भगवान की द्वारका जाने की इच्छा दबती गई और धीरे धीरे भगवान रथ से नीचे उतर गए। जैसे स्तुति खत्म हुई तब तक भगवान नीचे भी उतर गए, और नीचे उतर गए तब तक राजा युधिष्ठिर ने उसका हाथ पकड़ा और प्रेमणा राज्ञा निवारिता, अर्थात राजा ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और बोले चलो अंदर। तब तक राजा युधिष्ठिर वहीं पे खड़े थे तो उसका हाथ पकड़ के फिर उसको ले गए। यहाँ तक अब तक की जो स्तुति के बाद इतना बताया, और उसके बाद आज का जो श्लोक है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी दिख रहे थे, महारानी कुंती तो प्रार्थना कर रही थी लेकिन युधिष्ठिर का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था क्योंकि उसके मन में बहुत शोक था। वो राजा ये सोच रहे थे, राजा युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि केवल मेरे राज्य भोग के कारण इतने लोगों का वध हुआ, युद्ध से पहले अर्जुन को शोक हुआ, युद्ध के बाद, लेकिन युद्ध के पहले जो अर्जुन को शोक हुआ उसको भगवत गीता सुना के समझा दिया और वो समझ भी गया, लेकिन इसको बहुत सारे उपदेश दिए लेकिन युधिष्ठिर को ये उपदेश हजम नहीं हुआ। युधिष्ठिर को बहुत सारे उपदेश भगवान कृष्ण ने दिए लेकिन वो नहीं समझ पाए किसी भी प्रकार, और इवन भगवान कृष्ण नहीं स्वयं वेदव्यास वहाँ खड़े थे वो भी बहुत समझाए कि तुमको पाप नहीं लगा है, आप टेंशन मत लो, आपको किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है, आप सारे पापों से मुक्त हो, फिर भी युधिष्ठिर महाराज समझने को तैयार, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण बाहर से उपदेश दे रहे हैं वेदव्यास के रूप में और स्वयं कृष्ण के रूप में, लेकिन युधिष्ठिर के हृदय में बैठ के भी भगवान क्या कर रहे हैं उसको समझने के लिए मना कर रहे हैं, ये दोनों तुमको हाँ उल्टा सिखा रहे हैं इसलिए ध्यान रखो। तो बाहर से भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं लेकिन अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं कि ये जो बोल रहा है वो गलत है, उसको ये भी समझा, अंदर बैठ के कुछ और बाहर से, इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पे अद्भुत कर्मणा कहा गया, कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, यही अद्भुत कर्म है भगवान कृष्ण का कि बाहर से कुछ समझाते हैं लेकिन अंदर से उसको समझने देने के लिए तैयार। एक बार महाराज जी बता रहे थे, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि दुर्योधन के पास जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे वो टाइम पे उसने बहुत दुराचार किया था भगवान के साथ, और वो समय पे भगवान कृष्ण से ही दुर्योधन ने कहा था, पता नहीं मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत शक्तिशाली हो, आप मुझे बहुत समझाने का प्रयत्न भी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन पता नहीं मन में बैठ के कुछ कोई ऐसा समझा रहा है मुझे कि समझने नहीं दे रहा है वो। इस प्रकार महाभारत में उल्लेख है, दुर्योधन के वचन है, दुर्योधन ऐसा बोला है कि आप बाहर से आप समझा रहे हो मेरे समझ में आ रहा है सब सही है, लेकिन पता नहीं मन मानने को तैयार नहीं है, मतलब अंदर बैठ के भगवान ही उसको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ये है भगवान के अद्भुत कर्म है, भगवान के यही अद्भुत कर्म है, भगवान कृष्ण बाहर से उसको उपदेश दे रहे हैं और अंदर से उसको समझने के लिए नहीं दे रहे हैं। युधिष्ठिर की भी यही हालत है, युधिष्ठिर इस अवस्था में है कि भगवान कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं लेकिन वो समझने को, और युधिष्ठिर हालांकि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वो जाए अपने शुद्ध भक्त वैसे भीष्म पितामह के पास, है ना, क्योंकि उसको क्या था अभी शरीर छोड़ने का उसका समय आ रहा था, है ना, वो कौन सा समय कहते हैं उसको, उत्तरायण, है ना, उत्तरायण आने वाला था, उत्तरायण आएगा तो भीष्मदेव क्या करेंगे अपने शरीर को छोड़ देंगे। उत्तरायण आने का क्या अर्थ जानते हैं, उत्तरायण भगवान कृष्ण का नाम है, भीष्मदेव उत्तरायण की वेट कर रहे थे, उत्तरायण की राह देख रहे, क्योंकि अयन का अर्थ होता है आश्रय लेना, अयन है ना, द्वैपायन, द्वीप का जिसने आश्रय लेके जन्म लिया उसका नाम हुआ द्वैपायन, है ना, वैसे ही उत्तरायण मतलब उत्तरा के गर्भ का जिसने आश्रय लेके परीक्षित की रक्षा की है वो है भगवान कृष्ण उत्तरायण, है ना। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार उत्तरायण मतलब भीष्मदेव उत्तरायण की वेट कर रहे थे, मतलब भगवान कृष्ण की राह देख रहे थे, उसको समय से कोई लेना देना नहीं था, वो चाहते तो पहले ही शरीर छोड़ देते, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ूं, क्योंकि उसके दर्शन करते करते वो चाह रहे थे कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं, इसलिए भीष्मदेव उत्तरायण का वेट कर रहे थे मतलब भगवान कृष्ण की राह देख रहे थे, और इवन उपदेश भी दे रहे थे तो भगवान कृष्ण उसके सामने ही खड़े थे, तो वो समय पे उपदेश न देके शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण से भी बढ़कर ज्ञान किसका है, भीष्म पितामह, इसमें लिखा है अंतिम वाक्य यही है, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे, है ना, ज्ञान में भीष्म पितामह, हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से ही है, लेकिन भगवान जो है वो भक्त की ख्याति को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि आज तक जितना भी उन्होंने कार्य किया है वो ऐसे कार्य थे जो पूरा राजनीति से भरा हुआ, पूरा जीवन उसका उसी में बीत गया, है ना, राजाओं की राजनीति को बनाने में, उसके साथ युद्ध करने में, किसको क्या करना, भीष्म पितामह तो यही जिए पूरा, उसके पास क्या नॉलेज है ये किसी को पता, और ऐसे ही चले जाते तो लोग सोचते कि ऐसे ही कोई बड़ा योद्धा था, उसके पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के ज्ञान को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भीष्म पितामह के उपदेश, है ना, बहुत उन्होंने राजा के लिए क्या धर्म है, एक स्त्री के लिए क्या धर्म है, बहुत सारे प्रकार के धर्मों का उन्होंने विवेचन किया है, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, फिर अपने मन को भगवान में लगा दिया, यही इसके बाद वही चैप्टर है भीष्म पितामह की स्तुति। और ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे हैं, एक्चुअली पहले ऐसे वक्ता है जो सोए सोए प्रवचन दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे वक्ता हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, दो ऐसे वक्ता हुए हैं दुनिया में जो सोए सोए प्रवचन दिए और लोग खड़े खड़े सुने भी हैं, है ना। तो भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे हैं तभी वो समय पे उसके पास बहुत लोग आए हुए हैं, सारे राजाओं का आगे नाम दिया, मतलब सारे ऋषि मुनियों का आगे नाम दिया जाएगा, कौन कौन, भीष्म पितामह उपदेश कर रहे और सुनने के लिए आए हुए, बड़े बड़े इस संसार के ऋषि मुनि एवं नारद, वेदव्यास जी खुद भी वहाँ पे खड़े, भीष्म पितामह प्रवचन करेंगे, हालांकि वेदव्यास जी सारे शास्त्रों के रचयिता है किंतु फिर भी वो क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह के मुख से सुन रहे हैं, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के मुख से सुनी हुई बातों को भी सुनने में हमको हमारे हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, हालांकि हमको लगता है कि हमने ये बात सुनी हुई है ना, कई बार ऐसा होता है, किंतु फिर भी उस कथा को अगर शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं तो वो कथा हमको बहुत अच्छी भी लगती है और हमारे हृदय को बहुत शुद्ध भी जल्दी से करती है ना। जैसे हमने अनुभव किया 2-3 दिन, वही कथा हम जानते भी थे लेकिन फिर भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, और हमारे भक्ति करने की तीव्रता बढ़ती है उससे। वैसे शुद्ध भक्त के मुख से भगवत कथा को श्रवण करने से भक्ति करने की जो हमारी तीव्रता है वो और बढ़ जाती है। हम पढ़ते हैं और अपने से बोलते भी हैं लेकिन हमको उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना हमको शुद्ध भक्त के मुख से सुनने से हमारे में परिवर्तन आता है। इसलिए बहुत लोग थे वहाँ पे, बहुत कुछ जानने वाले, किंतु फिर भी भीष्म पितामह बता रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह का ज्ञान अगाध है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने भी लिख दिया कि भीष्म पितामह का ज्ञान भगवान कृष्ण से भी बढ़कर है ना, इतने ज्ञानी थे भीष्म पितामह, लेकिन कभी भी उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यह है, भीष्म पितामह इतने ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कभी क्या, इतना नॉलेज होने के बाद व्यक्ति कैसे बैठ सकता है शांति से? कई लोगों को तो आदत भी होती है, अगर कोई श्लोक बोलता है वक्ता तो उसके साथ साथ श्रोता भी बोलता है। तो इस प्रकार शुरुआत में हमको होता था, 2-4 श्लोक जब रटे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं आते थे, थोड़े बहुत श्लोक रटे थे, उसमें से अगर कोई कोटेशन देता है ना तो उसके साथ में बोलते थे ताकि आजू बाजू वाले को पता चलना चाहिए ना कि हमको भी आता है ना। लेकिन भीष्म पितामह को देखो, इतना नॉलेज जिसकी सराहना भगवान कृष्ण खुद करेंगे उसके ज्ञान की, और भी युधिष्ठिर के शोक को केवल भीष्म पितामह दूर कर पाए। ऐसे भीष्म पितामह इतने ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी ज्ञान का प्रदर्शन, क्योंकि ज्ञान जो है वो क्या है, जैसे हमको शुरुआत में जब आते थे तो हमको सिखाया जाता था ज्ञान कर्म धनावृतम, ऐसा उसको कैसे समझाते थे, जैसे ज्ञान जो है वो क्या है, हमारे हृदय के अज्ञान को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा है, एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है और उसके बाद वो दोनों कांटे को क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो ज्ञान का कांटा उसको जेब में रख के घूमेगा कोई, है कि नहीं, गलती से कहीं बैठने में फिर से वो चुभ जाएगा। इसलिए ज्ञान का कांटा जो है उसको भी फेंका जाता है उसमें, है ना। भक्ति ऐसी है कि लास्ट में ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही छोड़ दिया जाता है ना। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जब इसको ये पता चल जाता है तो ज्ञान और अज्ञान ये दोनों ही अपने आप छोड़ना होता है भक्त को। इसलिए भीष्म पितामह ने कभी भी, क्योंकि उनको तो ऐसे भी अज्ञान तो नष्ट हो ही चुका था उनका, है ना, और क्योंकि महाजन है और ज्ञान तो पूर्ण रूप से फिर भी था उनके पास, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका प्रदर्शन नहीं किया, है ना। भक्त अपने ज्ञान का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज को लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात को इसमें बताया गया है, है ना। भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं, वेदव्यास जी भी उसको समझा रहे हैं और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, माता कुंती ने भी कुछ बोला, सभी लोग ने थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन युधिष्ठिर के मन में कोई भी बात जच नहीं रही थी, है ना, किसी भी बात से उसको सांत्वना नहीं मिल रही थी कि चलो मैं पाप से मुक्त हूँ। और देखिए भक्त के लक्षण है एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज, है ना। युधिष्ठिर महाराज हालांकि उसको पता है कि ये भगवान ने हमसे कहा था और उसकी आज्ञा को ही हमने पालन किया, इसलिए इसमें कोई पाप, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इस बात को अपने ऊपर लेते हुए कह रहे हैं कि ये सारा जितना भी कार्य हुआ, मतलब जितना युद्ध हुआ, इसमें प्रभुपाद लिखे हैं कि 64 करोड़ 64 करोड़ लोग मारे गए, ये कोई कम संख्या नहीं होती है 64 करोड़, और कई लाख लोग तो भाग गए उस युद्ध को छोड़ के क्योंकि थोड़े बड़े डरपोक रहेंगे, डरने वाले वो भाग गए होंगे युद्ध को छोड़ के, क्योंकि ऐसे भी लास्ट में जब राजा का वध हो जाता है तो बचे कुचे सैनिक ऐसे ही भाग जाते हैं, क्योंकि राजा ही मर गया तो अभी कौन बचाएगा। तो जब देखा होगा कि राजा मर गया तो बचे कुचे भाग गए होंगे, और उससे पहले जब युद्ध चालू हुआ तभी कई लोग भाग गए होंगे युद्ध को देख के, पता नहीं इसमें जिए नहीं जिए, मर जाएंगे। तो इस प्रकार कई लाखों सैनिक भाग गए और उसमें फिर भी मरने वालों की संख्या गिनाई गई है 64 करोड़ लोग, इतने सारे लोगों का वध हुआ उसमें। और इस प्रकार जब भी युद्ध हुआ तो इन सारों का अंत्येष्टि संस्कार भी किया जाता था, सबके लिए तर्पण किया जाता था, और राजा जो है वो सबकी एक साथ में तर्पण विधि करता, क्योंकि राजा जो है उसकी तो प्रजा है, प्रजा के लिए उसको करना पड़ता है ना। राजा युधिष्ठिर ने भी सबके लिए, क्योंकि जितने सैनिक उसकी प्रजा ही मानी जाती है, तो उस भावना से उसको भी किया और उसके साथ साथ जो उसका एक बेटा था उसका भी। तो इस प्रकार युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हुए, बहुत दुखी थे कि इतने सारे लोगों को मरना पड़ा केवल किसके लिए, मेरी एक इच्छा पूर्ति करने के लिए, क्या कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, केवल इतनी इच्छा पूरी करने के लिए कितने 64 करोड़ लोगों को मरना पड़ा। और इसके लिए युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बहुत दुखी पा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्यों मेरे कारण इतने लोगों को मरना पड़ा, मैं राजा नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ जाता, मैं मर जाता तो जैसे इतने सारे लोग तो बच जाते मरने से। तो ये भावना से भक्त राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो रहे हैं, और इसका निवारण बहुत शास्त्रों का उपदेश दिया भगवान कृष्ण और आदि आदि ने, लेकिन नहीं समझे। हालांकि ये भगवान की इच्छा है, नहीं तो भगवान कृष्ण ने वो युद्ध में बोला ही था, है ना, कि अश्वत्थामा मर गया आप सब लोग बोल देना, पांडवों को बोला है ना, तो उसने क्या बोला, ठीक है सब लोग एग्री हो गए। युधिष्ठिर तैयार नहीं हो रहे थे, वो बोल रहे थे झूठ बोलना पाप है, तो बहुत छोटा पाप है, इतने सारे लोगों को मरने के सामने वो छोटा पाप है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने क्या किया, वो पाप नहीं किया। एक्चुअली पता है आपको, युधिष्ठिर ने वो पाप नहीं किया, मुझे पता नहीं है ये बोल दिया जब आंसर नहीं देना था तो उन्होंने क्या बोल दिया, हतो वा नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो वा नरो वा, वो मनुष्य मरा कि हाथी मरा ये मैं नहीं बताऊंगा, अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी मरा कि मनुष्य मरा ये। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने तो बोला ही था कि तुम सीधा ही बोल देना कि हाँ अश्वत्थामा मर गया तुम्हारा बेटा ही तो युधिष्ठिर बहुत ख्याल रखते थे। एक्चुअली धर्म युधिष्ठिर के विषय में हमने सुना है कि युधिष्ठिर अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, है ना, अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले थे, झूठ का सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया, जब तक जिए अपने जो हुआ वो चाहे उसका जो भी सजा मिलेगा हम सच बोलेंगे, ये युधिष्ठिर थे, है ना, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, वो धर्म के पुत्र थे, है ना, धर्म के पुत्र थे इसलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोले थे। और इसके कारण युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु भी कहा जाता है ना, युधिष्ठिर को अजात शत्रु भी कहा गया है कई जगहों पर। तो युधिष्ठिर की बहुत ही रिस्पेक्ट हुआ है, एक्चुअली बहुत ही भागवतम में नहीं उस समय के बहुत ही आदरणीय व्यक्तियों में युधिष्ठिर का नाम आता है, आदरणीय पुरुष थे युधिष्ठिर महाराज। पांडवों में भी भले अर्जुन तो अच्छे भक्त है लेकिन युधिष्ठिर का ज़्यादा वैल्यू होता था क्योंकि वो बड़े भी थे और अच्छे भक्त भी थे। तो भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण यहाँ पे उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप समझ जाओ कि ये सब नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं समझेंगे, अंत में जाके उसको वहाँ ले जाएंगे और भीष्म पितामह के पास जब ले जाएंगे तब दादाजी जब बताएंगे तब उसको अच्छा लगेगा, हाँ अभी दादाजी जो बोलेंगे वो सही है, भगवान कृष्ण शायद पता नहीं, उसको तो ऐसे भी झूठ बोलने की आदत है, कई बार झूठ बोले भी हैं, तो मेरे को ऐसे ही समझाने के लिए कुछ भी बोलते होंगे। युधिष्ठिर को मान लो ऐसा भी मन में आता होगा कि पता नहीं इसको क्यों भरोसा करें तो बोलते क्या करते क्या है ना। तो इस भावना से भी मानो भगवान कृष्ण की उस बात को वो सुनना न चाहे, लेकिन वेदव्यास जी जैसे व्यक्ति की तो सुननी चाहिए, वेदव्यास जी कभी ऐसा नहीं किए, जो बोले थे वो हुआ है और करते भी थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वो नहीं समझे तो नहीं ही समझे, है ना। इसी प्रकार इस संसार में भी होता है, इस संसार में भी प्रवचन तो सबको एक समान दिया जाता है लेकिन कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार नहीं करता था, तो जो नहीं करता है वो भी भगवत इच्छा ही समझो और क्या, नहीं समझ पा रहा है क्योंकि भगवान अंदर बैठे अगर समझाना चाहे तो उसको सपोर्ट करेंगे, ज्ञान देंगे उसको समझने के लिए, और नहीं समझना चाहे तो आप कितना भी समझाओ नहीं समझते, और बहुत साधारण सी बातों को लोग नहीं समझ पाते कहीं कहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत नॉर्मली बात मतलब इतना सिंपल होता है कि वो बात बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग भी उस सिंपल बात को नहीं समझते। तो ये केवल भगवत इच्छा से ही होता है ना, केवल भगवान की इच्छा है कि जो हम समझना चाहे वही समझ पाए, जो नहीं समझना चाहे वो नहीं समझे, चाहे कितना भी प्रयास करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं। भगवान की इच्छा रही तो छोटा व्यक्ति बड़ी बात को समझ जाएगा, और भगवान की इच्छा रही तो बड़ा व्यक्ति होते हुए भी, बहुत नॉलेज होते हुए भी, बहुत पढ़ा लिखा होता हुआ भी, वो व्यक्ति छोटी सी बात को नहीं समझ पाएगा, जिसको हम लोग कभी कभी कॉमन सेंस बोलते हैं, है ना। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा व्यक्ति होते हुए भी कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा बोलना पड़ता है कि इसको इतना भी ज्ञान नहीं है, है ना। साधारण ज्ञान जो होना चाहिए वो व्यक्ति में नहीं हो पाता, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से ही आता है वैसे, है ना। भगवान की इच्छा, भगवान की भक्ति करने से, ऐसे एक रामायण में एक बहुत सुंदर जगह पे लिखा गया है, जिसमें कहा है कि शंकराचार्य, ऐसे रामचरित मानस में भी है, लेकिन शंकराचार्य ने भी लिखा है भज गोविंद, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, ऐसा कुछ तो है, जिसमें लास्ट में उस व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति होती है। सत्संग से व्यक्ति को क्या मिलता है? विवेक। विवेक का अर्थ होता है विवेक बुद्धि, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। विवेक बुद्धि किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है, है ना। छोटी छोटी बातों को समझना विवेक बुद्धि उसको कहा जाता है, बहुत छोटी सी बातों को, सूक्ष्म बातों को समझ लेना, उसको विवेक बुद्धि कहा जाता है, है ना। जैसे विवेक बुद्धि होती है, कुछ लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में आते ही प्रणाम करते हैं, वहाँ से हम लोग सीधा, इतने सारे वैष्णव बैठे हो तो हम लोग सीधा आ नहीं सकते, है ना, ये विवेक बुद्धि है, उधर आके सीधा पहले, और कुछ लोग होते सीधा घुस जाते हैं, लेकिन ऐसे भी देखते हैं। तो जब ही इसको, एक्चुअली इसको विवेक बुद्धि ही कहा जाएगा, पता होते हुए भी वो इस प्रकार से कर लेना, मतलब उसमें विवेक की कमी है, है ना, उसमें साधारण ज्ञान की कमी है। इसलिए इस प्रकार कई सारे दृष्टांत होते हैं विवेक की, लेकिन उसको एग्जाम्पल के रूप में तो नहीं बता सकता, है ना, कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है और उसको कर लेना, उसको विवेक बुद्धि कहा जाता है। अपने से थोड़ा तो दिमाग लगा लेना कि यहाँ पर यह ज़रूरत है तो इसको ऐसा कर लेना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ पाता है, क्योंकि होता है कभी कभी बड़े बड़े लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन जो व्यक्ति भगवत भक्ति को स्वीकार करता है, है ना, सत्संग में जाता है, सत्संग करता है, वो व्यक्ति इन सारी बातों को बहुत सरलता से समझ लेता है, है ना। भले ही वो पढ़ा लिखा न भी हो, लेकिन इन सारी बातों को बहुत आसानी से समझ सकता है। इसलिए कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण समझा रहे, लेकिन उस बात को वो समझने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह उसको आगे जाके समझाएंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? हरे सत्यम सत्यम, हाँ, छः सात बार कुछ सत्यम सत्यम बोल के,
सब कुछ सत्य है उनका,
हाँ, भगवान कृष्ण सत्य ही है, है ना। भगवान कृष्ण सही में सत्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वचन लिया है कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं किसी भी हाल में अपने भक्त को बचाऊंगा। तो उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने झूठ थोड़ी बोला ना, सही तो किया है कि नहीं? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने सही किया। अपने भगवान ने भगवद गीता पहले बोला ना, और उसमें क्या बोला उन्होंने कि मैं अपने भक्तों की किसी भी हाल में रक्षा, और यहाँ पे नहीं, इवन भीष्म देव की भी रक्षा किए, है ना, उसकी मृत्यु के समय। भक्त लोग जीवन भर भक्ति करते हैं, पता नहीं लास्ट में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण उसको व्यवस्था कर ही देते हैं उसकी, है ना, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो भगवान कृष्ण ने, मान लो आप बोल रहे कि थोड़ा बहुत झूठ बोला, और झूठ नहीं है एक्चुअली, भगवान ने सही किया जो किया, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने किया, है ना। और वो युद्ध में भी वो चक्र उठाए, मारा थोड़ी था, उठा के ऐसे दौड़े थे दिखाया था डराने के लिए, मारा थोड़ी था, मार दिए होते तो कुछ होता, चलो भाई ये भगवान ने, चलो मारा नहीं था, खाली उठाया तो भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए, फिर अर्जुन को बोला अभी मारो, है ना। तो भगवान कृष्ण जो वचन लिए उसको तो पूरा ही किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि गलत। उसका एक वचन, पहला वचन उसका यह है कि भक्तों की रक्षा करेंगे, बाद में छोटे छोटे वचन छूट जाएंगे उससे उसको कर लेना देना नहीं है। थोड़े बहुत वचन छूट भी जाए तो झूठे हो गए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़ी बात को कभी कभी सही करने के लिए छोटी छोटी बातों को मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन आड़े तेड़े किए जाते। जैसे एक है ना, सततम स्मर्तव्य विष्णु भी स्मर्तव्य न जातु चीज सर्वे विधि निषेधासु ये तेवर किंकर। अगर भगवान को हम लोग स्मरण कर सकते हैं 24 घंटा, तो भी छोटे मोटे नियमों को अगर पालन नहीं भी हुआ कभी कभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा वो चिंता करने की आवश्यकता। उसी भगवान का प्रमुख वचन है कि भक्तों की रक्षा करूंगा, अगर उसको पालन करने में छोटा मोटा छूट भी गया तो उसमें प्रभुपाद ने एक स्तुति लिखे हैं जिसमें इस बात को लिखे है, भागवतम के श्लोकास को लिखे हैं कि पांच श्लोक है जिसमें लिखा है कि हे प्रभु भगवान कृष्ण, आप अगर कृपा करें, आप अगर उन लोगों को ऐसी कृपा करेंगे वो समझना चाहे, आपकी इच्छा है कि वो समझ जाए तो आराम से समझ जाएंगे, मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन मेरे प्रयास से मैं कितना भी समझाने का प्रयत्न करूँगा वो नहीं समझेंगे। ये स्तुति है, थैंक यू प्रभु, याद दिलाएं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।